नमस्कार, संयुक्त राष्ट्र समाचार के साथ मैं सचिन गौड़। 6 अगस्त 2021 के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में सुनिए, अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते हमलों और हिंसा से उपजी चिंताओं के बीच सुरक्षा परिषद में अहम बैठक। अगस्त महीने के लिए भारत ने संभाली है सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता। धनी देशों में कोविड 19 टीकों की बूस्टर खुराक दिए जाने पर स्वैच्छिक रोक लगाए जाने की पुकार। लेबनान में भीषण धमाकों के एक साल बाद भी कठिनाई में जीवन गुजार रहे हैं लोग। 98% लोगों को किसी न किसी रूप में चाहिए मदद। बाल कुपोषण के विरुद्ध लड़ाई में स्तनपान की भूमिका है बेहद अहम। और मानसिक स्वास्थ्य हालात के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए फीफा की नई मुहिम को विश्व स्वास्थ्य संगठन से मिला समर्थन। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की विशेष प्रतिनिधि डेबरा लियोन्स ने आगाह किया है कि अफगानिस्तान अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। उन्होंने शुक्रवार को सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान में हालात के मुद्दे पर आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आगे के रास्ते पर या तो शांति वार्ता है या फिर त्रासदीपूर्ण ढंग से आपस में गुथे हुए अनेक मानवीय संकट। इससे पहले भारत ने अगस्त महीने के लिए सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालते हुए क्षेत्रीय और समुद्री सुरक्षा पर जोर दिया था। ज्यादा जानकारी के साथ यूएन न्यूज हिंदी के प्रमुख महबूब खान।
अफगानिस्तान में जबकि युद्ध अब एक नए ज्यादा खतरनाक और विनाशकारी चरण में दाखिल हुआ नजर आ रहा है, देश में संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अधिकारी डेबरा लियोन्स ने वहां एक नई मुसीबत को टालने के लिए शुक्रवार को सुरक्षा परिषद से तेज कार्रवाई करने की अपील की। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत और देश में यूएन सहायता मिशन की मुखिया डेबरा लियोन्स ने कहा कि हाल के महीनों में तालिबान को मिली बढ़त और प्रमुख शहरों पर उसके हमलों में सीरिया संकट और बाल्कन युद्ध की झलक नजर आती है।
अफगानिस्तान इज नाउ एट ए डेंजरस टर्निंग पॉइंट। अहेड लाइज ईदर अ जेन्युइन पीस नेगोशिएशन और अ ट्रेजिकली इंटरट्वाइंड सेट ऑफ क्राइसिस।
डेबरा लियोन्स कह रही थी कि अफगानिस्तान अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। निकट भविष्य में या तो गंभीर शांति वार्ता नजर आएगी या फिर एक दूसरे में उलझे जटिल संकट। अगर ऐसा हुआ तो क्रूर, हिंसक और जानलेवा संघर्ष बढ़ेगा, जिसमें मानवीय स्थिति अत्यंत गंभीर होगी और बड़े पैमाने पर मानवाधिकार हनन होगा। उन्होंने आगाह करते हुए कहा कि इस स्थिति के गंभीर परिणामों का असर देश की सीमाओं से परे भी पहुंच सकता है। उन्होंने सुरक्षा परिषद के सदस्य राजदूतों से इस मौके का फायदा उठाते हुए अफगानिस्तान को एक और मुसीबत में धंसने से बचाने के लिए पक्के इरादे दिखाने का आग्रह किया। ध्यान रहे कि तालिबान ने देश से विदेशी सेनाओं के निकल जाने के बाद अनेक ग्रामीण इलाकों पर कब्जा कर लिया है और अब प्रमुख शहरों की तरफ बढ़ रहा है।
कोरोना वायरस वैक्सीन की अब तक दुनिया भर में 4 अरब खुराकें दी जा चुकी हैं। इनमें 80% से अधिक खुराकें उच्च और ऊपरी मध्य आय वाले देशों में लोगों को मिली हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम गेब्रियसिस ने बुधवार को जिनेवा में पत्रकारों को संबोधित करते हुए आगाह किया कि एक ऐसे समय जब करोड़ों लोग वैक्सीन की पहली खुराक की प्रतीक्षा कर रहे हों, कुछ धनी देश बूस्टर खुराक की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, हालात की दिशा पलट देने की जरूरत है। अधिकांश वैक्सीनें उच्च आय वाले देशों से निम्न आय वाले देशों में भेजी जानी होंगी।
WHO is calling for a moratorium on boosters until at least the end of September to enable at least 10% of the population of every country to be vaccinated.
महानिदेशक गेब्रियसिस कह रहे थे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन सितंबर के अंत तक कोविड 19 टीकों की बूस्टर खुराक पर स्वैच्छिक रोक लगाए जाने का आग्रह कर रहा है, ताकि विश्व के सबसे निर्बल समुदायों का टीकाकरण सुनिश्चित किया जा सके। इसके तहत वैक्सीन की वैश्विक आपूर्ति पर नियंत्रण रखने वाले देशों और कंपनियों का सहयोग अहम होगा। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी ने सितंबर महीने के अंत तक हर देश की कम से कम 10% आबादी के टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। उधर यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने कोविड 19 वैक्सीन के असाधारण और त्वरित विकास को वैश्विक महामारी से मुकाबले में एक महान उम्मीद का स्रोत बताया है, मगर आगाह किया है कि ये टीके जल्द से जल्द हर जगह हर किसी के लिए पहुंचाए जाने होंगे। उन्होंने वैक्सीन के न्यायसंगत वितरण को मौजूदा दौर का सबसे अहम मुद्दा करार दिया और एक वैश्विक वैक्सीन योजना की पुकार लगाई है। लेबनान की राजधानी बेरूत के बंदरगाह पर भीषण धमाकों को एक वर्ष पूरा हो गया है। पिछले साल 4 अगस्त को हुए इस हादसे में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, हजारों लोग घायल हुए और हजारों लोग ही बेघर हो गए। संयुक्त राष्ट्र और फ्रांस ने मिलकर विस्फोट प्रभावितों के लिए समर्थन और $35 करोड़ जुटाने के उद्देश्य से इस हफ्ते एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। वहीं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने मंगलवार को एक सर्वेक्षण के नतीजे प्रकाशित किए, जिनके मुताबिक विनाशकारी धमाकों के एक साल बाद भी 98% परिवारों को सहायता की जरूरत है। एक रिपोर्ट के साथ प्रतिष्ठा जैन।
बदहाल अर्थव्यवस्था, राजनीतिक अस्थिरता और COVID-19 महामारी की वजह से हालात और भी ज्यादा विकट हो गए हैं। जुलाई में कराया गया यह सर्वेक्षण 1,187 घरों के साथ टेलीफोन पर किए गए इंटरव्यू पर आधारित है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के प्रतिनिधि यूकी मुकाओ ने कहा कि त्रासदीपूर्ण घटनाओं के एक वर्ष बाद भी बच्चों की जिंदगी पर गहरा असर बरकरार है। हमें अभिभावकों ने यही बताया है, वे परिवार एक बेहद खराब समय में धमाकों के बाद की स्थिति में उबरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, एक विनाशकारी आर्थिक संकट के दौरान और एक बड़ी महामारी के दौरान। यूनिसेफ के मुताबिक हर 10 में से 7 घरों ने इस घटना के बाद बुनियादी सहायता का आग्रह किया है, मुख्य रूप से नकदी सहायता और भोजन के रूप में। इनमें से लगभग सभी लोगों को आज भी सहायता की आवश्यकता है। सर्वेक्षण के अनुसार धमाकों के बाद लगभग सभी परिवारों का कहना था कि उनके घरों को मरम्मत की आवश्यकता है। इसके एक वर्ष बाद भी करीब आधी संख्या में परिवारों को इसकी जरूरत है। हर 10 में से 4 घरों का कहना था कि उनकी जल आपूर्ति व्यवस्था पर असर हुआ है। 1/4 घरों के मुताबिक उनके लिए हालात जस से तस हैं।
विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र ने देशों से स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए जरूरी माहौल बनाने को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। यूएन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि कुपोषण के खिलाफ वैश्विक प्रगति में तेजी लाने के लिए अब तक जो संकल्प लिए गए हैं उनके अनुरूप कार्रवाई की जानी होगी। एक रिपोर्ट के साथ महबूब खान।
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हेनरिएटा फोर और WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडिनोम गेब्रेसस ने 7 अगस्त तक चलने वाले ब्रेस्ट फीडिंग वीक यानी विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर सोमवार को एक साझा बयान जारी किया। उन्होंने ध्यान दिलाते हुए कहा कि सरकारें, दानदाता, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र ने एक साथ आकर न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ ईयर ऑफ एक्शन नामक पहल शुरू की थी। इसका उद्देश्य बच्चों के समुचित विकास के लिए कार्रवाई वर्ष को आगे ले जाना है। इस पहल को एक ऐसा ऐतिहासिक अवसर करार दिया गया है जिससे बाल कुपोषण के उन्मूलन के लिए वैश्विक संकल्प को पूरा किया जा सकता है। यूएन एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों ने कहा कि स्तनपान इस संकल्प को साकार करने के केंद्र में है। शिशु को जन्म के पहले ही घंटे में स्तनपान शुरू कराना, उसके बाद 6 महीनों तक सिर्फ स्तनपान कराना और 2 सालों या उससे भी ज़्यादा समय तक स्तनपान कराते रहना नाटेपन और मोटापे सहित बाल कुपोषण के सभी रूपों के विरुद्ध शक्तिशाली रक्षा कवच है। स्तनपान बच्चों की पहली वैक्सीन के रूप में भी कार्य करता है और उन्हें बचपन की अनेक आम बीमारियों से बचाता है।
विश्व फुटबॉल संस्था फीफा ने संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से मानसिक स्वास्थ्य हालात के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम है #reachout, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के साथ मिलकर शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत ये रेखांकित करने की कोशिश की जाएगी कि खराब होते मानसिक स्वास्थ्य के लक्षणों को शुरुआती स्तर पर ही पहचानना कितना अहम है। ये अभियान एक ऐसा संवाद या बातचीत शुरू करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिसके जरिए कोई जिंदगी बचाई जा सकती हो। दुनिया भर में लगभग 26 करोड़ लोग अवसाद से प्रभावित हैं और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी लगभग आधी समस्याएं 14 वर्ष की उम्र तक शुरू हो जाती हैं। 15 से 29 वर्ष की उम्र के लोगों में मौत होने का 4th सबसे बड़ा कारण आत्महत्याएं होती हैं। ऐसे हालात में परिवार, दोस्तों या फिर किसी स्वास्थ्य कर्मी के साथ बातचीत और संवाद करना बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सचिन गौड़ को अनुमति दीजिए। नमस्कार।